کا کلاس چل رہا تھا 31/5/1968 تیسرے پیج کے مدھیہ میں بات چل رہی تھی بھکتی مارگ میں دیہ بھان کے کارن تم سبھی کو یاد کرتے تھے ابھی ماں میں کم یاد کرو ایک باپ ملا ہے تو اٹھتے بیٹھتے باپ کو یاد کرو ایسا کریں گے تو بہت خوشی ہوگی باپ کو یاد کرنے سے سارے وشو کی بادشاہی ملتی ہے کیونکہ باپ سارے وشو کا بیج روپ ہے بیج جیسے مٹھی میں آ جائے تو سمجھو سارا وشو تمہاری مٹھی میں آ گیا جتنا جتنا ٹائم کم ہوتا جاوے گا اتنا جلدی جلدی تم پرشارتھ کرتے رہیں گے اور دن پرتی دن دکھ بھی بڑھتے رہیں گے آتما تو کب تھکتی نہیں ہے پرنتو تم آتما بننے کی پریکٹس کریں گے تب تو تھکان نہیں ہوگی نا تم شریر سے کوئی پہاڑ آدی پر چڑھیں گے تو تھک جاویں گے یہاں تو آتما من بدھی کی شکتی سے اونچی اسٹیج میں جاتی ہے تو تھکنے کی تو بات ہی نہیں باپ کو یاد کرنے میں تم کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی بہت ہلکے ہلکے رہیں گے خوشی میں رہیں گے بابا کو یاد کر کے آگے آگے چلتے جائیں گے آدھا کلپ بچوں نے محنت کی ہے شانتی دھام میں جانے کے لیے پرنتو اس آدھا کلپ میں تمہاری ایم آبجیکٹ تو کچھ بھی نہیں تھی ایم آبجیکٹ کا تم کو پتہ ہی نہیں تھا تم بچوں کو تو پریچے ہے بھکتی مارگ میں جس کے لیے اتنا سبھی کچھ بیا کیا وہ ہی ابھی کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرو اب تم خیال کرو کہ بابا ٹھیک کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں وہ بھگت تو سمجھتے ہیں کہ پانی سے ہی پاون ہو جائیں گے پرنتو یہ سبھی جھوٹ بات ہے پانی کو کوئی بلوتا رہے تو پانی سے کیا سار نکلے گا ندیاں تو صاف پانی کی ہیں، سروبر بھی پانی کے ہیں، پرنتو ساگر منتھن کا نام بہت ابالا ہے، ساگر میں انیک رتن بھرے پڑے ہیں، تو تم بھی بچار ساگر منتھن کریں گے تب ہی سچائی کو جانیں گے۔ یہ پانی تو جہاں تہاں بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ گنگا پانی کی نہیں ہے؟ پانی کی گنگا میں کوئی اسنان کرنے سے کیسے پاون بنے گا؟ اور یہ تو برسات کا اکٹھا ہوا پانی ہے، پھر یہ پانی جھرنوں سے آتا ہی رہتا ہے، یہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی قدرت کا کمال ہے، برسات بند ہو جاتی ہے پرنتو پانی تو آتا ہی رہتا ہے نا۔ ان کو گنگا کا پانی نہیں کہیں گے، کیوں نہیں کہیں گے؟ ان کو مانے کن کو؟ ان کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو انگلی کس طرف جاتی تھی بابا کی، اور اس کی جب کہتے تھے تو کس کی طرف اشارہ ہوتا تھا؟ اس کی معنی برہما کی اور، اور ان کی جب کہتے تھے ریگارڈ پوروک کہتے تھے تو نارائن کی طرف اشارہ ہوتا تھا۔ ان کو پانی نہیں کہیں گے کیونکہ نارائن والی آتما تو سارے وشو کی بیج ہے، ویشنو لوگ ہمیشہ کنواں کا ہی پانی پیتے ہیں، ایک طرف سمجھتے ہیں پوتر ہے اور دوسری طرف پھر سمجھتے ہیں پتت سے پاون بننے اسنان کرنے جانا ہے۔ اب اس کو تو اگیان ہی کہیں گے نا، برسات کا پانی تو اچھا ہی ہوتا ہے، پرنتو یہ بھی ڈاما کا قدرت ہی کہا جاتا ہے۔ خدائی قدرت ہے، نیچرل قدرت، تم جانتے ہو کہ بیج تو کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس چھوٹے سے بیج سے کتنا بڑا جھاڑ نکلتا ہے، یہ بھی جانتے ہو کہ دھرتی کلراٹھی ہو جاتی ہے تو اس دھرتی میں طاقت نہیں رہتی ہے، बीज सरसब्ज नहीं होता है, अगर थोड़ा सरसब्ज हो भी जाए तो उन दानों में स्वाद नहीं रहता है। तो दो बातें हैं, बीज और धरणी। देखा जाता है कि बीज कितना सूक्ष्म है, जितना सूक्ष्म बीज होता है और धरणी भी जितनी सरसब्ज होती है तो झाड़ उतना ही बड़ा और सरसब्ज हो जाता है, फलीभूत हो जाता है। फलों में भी स्वाद रहता है। तुम बच्चों को तो यहां ही बाप सब कुछ अनुभव कराते हैं। कैसे स्वर्ग होगा, परंतु अभी तो स्वर्ग नहीं है ना, ये भी जामा में नूद है। बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहां के फल आदि कितने मीठे होंगे, तुम ध्यान में देख कर आते थे और सुनाते थे, फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वो वहां जब जावेंगे तो उन्हें आंखों से देखेंगे। और मुख से खावेंगे भी, तुम कोई भक्ति मार्ग का साक्षात्कार नहीं करते हो, तुम्हारा तो तीसरे नेत्र का साक्षात्कार है। तो सारा मदार है पुरुषार्थ पर। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो पावेंगे कैसे। अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। अभी हमको मालूम पड़ गया है, परंतु पावन बनने में ही टाइम लगता है। इसमें याद की यात्रा बहुत मुख्य है। देखा जाता है कि बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं तो फिर कहते हैं आपस में भाई भाई समझो, क्योंकि बहन भाई समझने से भी दृष्टि फिर जाती है और आत्मा आत्मा भाई भाई समझने से तो फिर शरीर ही नहीं रहता है। आत्माएं बिंदु बिंदु तो एक जैसी, बहन भाई अर्थात शरीर समझने से फिर शरीर का अंतर याद आता है। वास्तव में हम सभी आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। तो तुमको चेंज करने की ये बाप की युक्ति है क्या, अपन को आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखो। ये भी जानते हो यहां इस दुनिया में जो भी इन आंखों से देखने में आता है वो सब भस्म हो जाने वाला है, विनाश हो जाएगा। तुमको तो ये शरीर छोड़ करके नंगे जाना है। तुम यहां आते ही हो सीखने के लिए। कि हम आत्मा ये शरीर छोड़ करके कैसे जावें, ये मंजिल है तुम्हारी। ये शरीर तो अभी आत्मा को बहुत प्यारा है, शरीर न छूटे इसके लिए दुनिया में कितना प्रबंध करते हैं। कहीं हमारा ये शरीर न छूट जाए। तो देखो आत्मा को इस शरीर से बहुत ही प्यार है। बाप कहते हैं ये तो तुम्हारा पुराना शरीर है, अभी तुम तमो प्रधान हो गए हो, तुम्हारी आत्मा अभी छी छी हो गई है, इसीलिए तुम इतने दुखी और बीमार पड़ते हो। बाप कहते हैं अभी शरीर से प्यार नहीं रखना, ये तो पुराना शरीर है, अभी तो तुमको नया शरीर खरीद करना है। परंतु नया शरीर खरीद करने के लिए यहां कोई दुकान नहीं रखी हुई है जहां से खरीद लाओ। तो क्या करेंगे है? नया शरीर लेने के लिए, खरीद करने के लिए क्या करना है? अरे बाप को याद करो तो तुम पावन बन जावेंगे, फिर तुम्हारी आत्मा पावन बनने से शरीर भी पावन मिलेगा। तुम्हारे शरीर के पांच तत्व भी पावन बन जाएंगे। तत्वों आदि को भी याद नहीं करना है, क्यों? तत्वों को क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि तत्व तो जड़ होते हैं और आत्मा चैतन्य होती है। आत्माएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। ऊंचते ऊंचे है बाप, तो उस ऊंचते ऊंच को ही याद करना है। बाकी ऐसे भी नहीं कि सिर्फ बिंदु आत्मा को याद करने से हो जाएगा। शरीर बगैर आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बाप तो इस शरीर का लोन लेकर आए हैं, ये मुकर्रर रथ है, इस रथ में वो ऊंचते ऊंच आत्मा काम करती है। ऊंचते ऊंच पार्ट बजाती है। तो बाप सभी बातें समझा करके कहते हैं, कहते हैं मनमना भव, मेरे में मन को तिरोहित कर दे। इसके लिए अपन को आत्मा समझो, और तुम समझते हो हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा इस शरीर के मालिक हैं, हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, हमको ये पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। 31-5-68 की वाणी का चौथा पेज। नाटक में कब रोते हैं क्या? ये षष्ठी में बड़ा नाटक चल रहा है, तुम साक्षी होकर के देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। बाकी तो शास्त्रों में जो बातें बैठ लिखी हैं, वो सभी दंत कथाएं हैं। अभी ये भक्ति मार्ग दंत कथाओं वाला मार्ग खलास जरूर होना है। वो तो भक्ति करते करते माला फेरते फेरते ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। बैठे बैठे मरते रहेंगे, कब न कब ऐसे मरते ही रहेंगे। तो बाप समझाते हैं अभी जास्ती बच्चे पैदा न करो, क्या कहा किसको समझाते हैं? अरे बाप किसको समझाते हैं? दुनिया वालों को समझाते हैं या ब्राह्मण बच्चों को समझाते हैं? तो ब्राह्मण बच्चों को अगर समझाते हैं कि जास्ती बच्चे पैदा ना करो, तो क्या ब्राह्मण बच्चे बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं? है? कौन से बच्चों की बात है? है? अभी जास्ती बच्चे पैदा करने में लगे रहेंगे, संख्या ही बढ़ाते रहेंगे, तो माला बनने में अड़चन आवेगी या नहीं आवेगी? माया का फाइनल पेपर होगा तब ही माला बनेगी। तो जो ढेर के ढेर बच्चे पैदा करते जाते हैं, कमजोर आत्माएं यज्ञ में प्रवेश करती जाती हैं, वो माया की फाइनल परीक्षा में ठहर सकेंगी? नहीं ठहर सकेंगी। बच्चे पैदा करते हैं, फिर वो खलास हो जाते हैं, तो पैदा करने वालों को दुख होगा या नहीं होगा? दुख के वाइब्रेशन में खुद भी डूबते रहेंगे। तो क्या करना है? ढेर बच्चे पैदा करना है या शेर दिल पैदा करने हैं? बेसिक में थे बच्चा बुद्धि की पढ़ाई जब पढ़ते थे तो प्रदर्शनी आदि से ढेर के ढेर बच्चे पैदा होते थे या थोड़े पैदा होते थे? उनमें ताकत ज्यादा होती थी या कम होती थी? है? राजाएं निकलते थे या प्रजा निकलती थी? अभी तो राजाओं को प्रत्यक्ष करना है, कलयुग के अंत में राजाएं गुप्त हो गए, सतयुग के आदि में बाप ने राजाई तैयार की थी, राजाओं का संगठन रूपी माला तैयार की थी, अभी वो गुप्त हो गए हैं, उनको नंबरवार प्रत्यक्ष करना है। तो ये दुनिया नाटक है, अभी हम बच्चों के लिए मौजों का युग कहें या रोने का युग कहें? और ढेर बच्चे पैदा करेंगे तो है तो रोने का युग आ जाएगा। रावण के लिए भी कहते हैं, एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण गर दिया नवाती। अब शास्त्रों में तो दंत कथाएं हैं, जास्ती बच्चे पैदा करना कोई भी काम का नहीं, क्योंकि वो कोई काम के नहीं रहेंगे। बेसिक ज्ञान में भी आदि के सतो प्रधान काल में जो बच्चे निकल आए वो आदि के रतन अभी भी काम देते रहे, जो आदि में वही अंत में। यहां एडवांस में भी ऐसे है, आदि में जो श्रेष्ठ रत्न निकल आए वो अभी तक पावरफुल रूप से काम देते हैं, अभी नए नए जो निकलते हैं उनमें बहुत कम परसेंटेज है जो ठीक से टिके रहते हैं। अभी जास्ती बच्चे पैदा करने से काम नहीं चलेगा, कोई के भी बच्चे वारस नहीं बनेंगे। अभी समय ही नहीं है जो बच्चे बड़े हों और वारिस बन सके। तो कैसी पैदाइश करनी चाहिए? है बाहर की दुनिया में से नयो नयो को निकालना है या पहले ब्राह्मण परिवार की सेवा करनी है? घर से खैरात कर शुरू की जाती है। यहां जितने बैठे हैं वो सब बेसिक में से निकले हैं या जास्ती परसेंटेज में बाहर की दुनिया से निकले हैं? है बेसिक से निकले हैं। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया भी हमारी दुनिया है, वो भी बाप के बच्चे हैं। वो जास्ती गहराई से समझेंगे या बाहर के समझेंगे? हां कोई कोई हैं जो पूर्व जन्म में भी बेसिक में बड़े तीखे होकर चले हैं। नहीं तो सब समझते हैं बच्चे बड़े होंगे वारस बनेंगे, अब ये तो भक्तों की बात हो गई। जो समझते हैं कि कलयुग की आयु अभी बड़ी लंबी है, विनाश के ऊपर तुम बच्चों को ज्यादा विश्वास है या बच्चा बुद्धि ब्राह्मणों को ज्यादा विश्वास है कि विनाश होगा या नहीं होगा? जिनको विश्वास होगा वो धन बटोरने में लगे रहेंगे या ईश्वरीय धन बटोरने में बुद्धि खपावेंगे? इससे देखा जाता है कि कौन समझते हैं अभी कलयुग की आयु बहुत लंबी है, अभी दुनिया बहुत लंबी चलने वाली है। बाप कहते हैं ये तो है ही 5000 वर्ष का ड्रामा, तुम इसका हिसाब करते रहो। संगम युग की शूटिंग पीरियड में भी इसका हिसाब करते रहो। अभी जास्ती बच्चे पैदा करेंगे तो क्या वो वारिस बन सकेंगे? वारिस अर्थात, अरे बाप से क्या वर्षा मिलता है? राजा ही का वर्षा मिलता है। जो नए ढेर ढेर के ढेर बच्चे निकलते हैं वो सब राजा बनेंगे क्या? प्रजा बनना ये बाप का वर्षा है क्या? बाप राजाई का वर्षा देने आते हैं या प्रजा बनने का वर्षा देने आते हैं? बाप तो स्वाधीन बनाने आया है, प्रजा तो अधीन होती है। तो फिर क्यों इतने बच्चे पैदा करते रहते? माना सन्यासी बने हैं? सन्यासी भी नहीं बनना है, करना क्या है? पावन बनना है और पवित्र क्वालिटी की आत्माएं निकालनी है। मोह नहीं रखना है क्योंकि मोह बहुत है। धन में भी बहुत मोह रखते हैं ना, पिछाड़ी में कहेंगे बाबा ये सब आप ले लो, तो बाबा कहेंगे टू लेट, अभी हम लेकर के क्या करेंगे? पिछाड़ी में क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पिछाड़ी जब तक होगी तब तक तो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। बाप का काम तो हो गया, बाप क्या करने आए हैं? और धर्म पिताएं आते हैं वो राजधानी नहीं स्थापन करते, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं और बाप राजधानी स्थापन करते हैं। तो बाप कहते हैं ये सभी खत्म हो जाना है। हम इतना लेवे ही क्यों जो भर करके देना पड़े। ये हम किसने बोला है? बाप दादा ने बोला। शिव बाप को भर करके देना है क्या? हम तो पक्का सर्राफ हैं, कोई से लेवे भी और खत्म हो जावे फिर हमको भर करके देना पड़े, तो ऐसा हम लेवे ही क्यों? इसलिए यहां गरीब बहुत आते हैं। गरीब कणा दाना देवेंगे या ढेर का ढेर देवेंगे? गरीब तो कणा दाना ही देवेंगे, उनके पास है ही इतना। तो जो कणा दाना भी देते हैं तो भी उनको बहुत मिल जाता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर दिया जबकि बहुत जरूरत थी। इसलिए दुनिया में फसल भी बोते हैं, तो जो पहले पहले बीज की बुआई हो जाती है उसमें जास्ती फल निकलता है, या पिछाड़ी में बोते हैं उसमें जास्ती फल निकलता है। पहले वाली फसल बहुत फल देती है। ये मम्मा का भी मिसाल है, कोई आते हैं जल्दी ही चले जाते हैं, टिकते नहीं हैं, क्योंकि योग नहीं है, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। बाकी इतना जरूर है कि जो कमाई की है वो ब्राह्मण की कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जन्म हुआ है तो भी बहुत ऊंच घर में, जहां सर्विस कर रही है। किसकी बात बताई है? मम्मा की बात बताई। इनके चरित्र ही ऐसे हैं, फिर भी बहुत ताकत लेकर गई है। किसकी ताकत ले है? बेहद के बाप की ताकत ली है। कौन सी मम्मा की बात? ये मुरली कब की है? 1968 की है। 1968 की मुरली ओम राधे मम्मा के ऊपर आग लागू होती है, और वही मुरली ड्रामा प्लान अनुसार बाद में रिपीट होती है, तो फिर किसके ऊपर लागू होगी? हैं? एडवांस में भी मम्मा है या नहीं है? बेहद के बाप की ताकत लिए है। आत्मा में ताकत होगी तो चरित्र भी ऐसे ही चलेंगे। कैसे चरित्र चलेंगे? ओम राधे मम्मा ने जो ताकत ली उसके कैसे चरित्र चलेंगे, किसमें प्रवेश करके पार्ट बजावेगी? यह बजाती है, हैं? छोटी मम्मा, छोटी मां में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, तो छोटी मां के चरित्र कैसे होंगे, हैं? अरे देवियों के चरित्र गाए जाते हैं ना, देवियां भी नंबरवार होती हैं कि एक जैसी होती हैं? नंबरवार है। अव्वल नंबर की देवी कौन हुई? जगदम्बा। अव्वल नंबर का देवता कौन हुआ? तो देवी कौन हुई? है? नारायणी हुई, लक्ष्मी हुई। आज भी कहते हैं घर में बहू आती है तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई। ऐसे नहीं कहते, कौन आई? जगदम्बा आई, महाकाली आई। तो आत्मा में ताकत होगी तो चरित्र भी ऐसे ही करेंगे, जैसी ताकत भरी होगी। कृष्ण में ताकत थी, तब तो कृष्ण के चरित्र दिखाते थे। कौन से कृष्ण के चरित्र दिखाते? भक्ति मार्ग में संपूर्ण स्टेज के चरित्र दिखाते या पूर्ण स्टेज के चरित्र दिखाते? कृष्ण की आत्मा जब संपूर्ण बनती है, अधूरा चंद्रमा या संपूर्ण चंद्रमा? संपूर्ण सोलह कला संपूर्ण चंद्रमा बनती है तब के चरित्र दिखाए हैं। तो बताओ उस समय के पैदा हुए बच्चे कैसे होंगे? जिस समय कृष्ण की आत्मा सोलह कला संपूर्ण बने, कैसे फर्स्ट क्लास बच्चे होंगे? जब कृष्ण की आत्मा सोलह कला संपूर्ण बने तो फर्स्ट क्लास बच्चे कितने होंगे? साढ़े चार लाख बच्चे हैं, वो तो प्रजा है। बाप प्रजा बनाने आए हैं क्या? तो कैसे बच्चे होंगे और कितने होंगे फर्स्ट क्लास? है? आठ बच्चे होंगे। कौन से आठ? अष्टदेव। ऐसे बच्चे होंगे जो काप पुरुषार्थी जीवन में रोएंगे नहीं। पुरुषार्थी जीवन में रोना होता है ना, नहीं तो संगम युग में ब्राह्मण बच्चों का जो पुरुषार्थी जीवन है, मौजों का युग होना चाहिए या रोने का युग होना चाहिए? अगर रोएंगे तो मां बाप क्या समझेंगे? इनका मौजों का युग है या रोने का युग है? अगर हल्के फुल्के रहेंगे, कब रोएंगे नहीं, तो कहेंगे ये तो देवता है। देवताएं कब रोते नहीं है, बहुत हल्कापन रहता है। समझेंगे जरूर कोई दैवी गुणों वाला बिछुड़ करके आया है। जो गुणों को साथ में लेकर के आया है। तो जो गुणों को साथ में लेकर आएंगे, जन्मते ही ऐसे होंगे, तो सर्विस करेंगे या डिससर्विस करेंगे? सर्विस में ही लगे रहेंगे। तुम शरीर छोड़ते हो तो भी सर्विसेबल हो। क्या मतलब? है, तुम शरीर छोड़ते हो माने? कब की बात बताई? अरे यज्ञ के आदि में एडवांस के बच्चे थे या नहीं थे? तो शरीर छोड़कर आए या ऐसे ही आ गए? बल शरीर छोड़ा तो भी तुम सर्विसेबल हो। तो ये नियम है, जितना जितना पहले गए हैं उतने ही बड़े हो करके फिर आवेंगे। बड़ा किसको कहा जाता है? जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा हो। तो पहले जाने वालों में किनकी गिनती होगी? अरे राम वाली आत्मा अकेली होगी या और भी गए होंगे? और भी आठ हैं। तो जो आधा में छोड़ा हुआ है वो फिर लेने आवेंगे। यज्ञ के आदमी क्यों छोड़ करके चले गए? क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं था, आधा ही ज्ञान था। एडवांस नॉलेज तो थी ही नहीं। आगे चल करके ये भी बाबा बता देंगे कि तुम्हारे आगे वाला फलाना नाम वाला ये है। यज्ञ के आदमी अच्छे अच्छे नाम रखे थे ना? तो ये भी बता देंगे। फिर तो तुमको बहुत खुशी होगी। जबकि बाप इतना सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं तो ये बातें क्यों नहीं बतावेंगे यज्ञ के आदि की? ये तो बाप का ड्रामा में पार्ट है। अभी तक बहुत पार्ट रहा हुआ है। अभी देखो बाबा गुई गुई बातें सुनाते रहते हैं जो पहले कभी नहीं सुनाई थी। कोई पूछते हैं बाबा ये गुह्य बातें पहले क्यों नहीं बताई? अरे ये तो ड्रामा है ना। ड्रामा में जब जो बात बताने का पार्ट था तब बताई। सुनाते जावेंगे तुम एक्सपेक्ट करो। बाबा जब तक है गुई गुई बातें सुनाते ही रहेंगे। कब तक है? हैं? جب تک جینا ہے تب تک پینا ہے. جینے کا کیا مطلب؟ جب تک دیوان میں جیتے رہیں گے تب تک کوئی پوچھے پھر بعد میں کیا ہوگا؟ تو بولو بابا نے ہم کو یہ تھوڑے ہی بتایا ہے کہ بعد میں کیا ہوگا. آگے کی بات آگے چل کے بتا دیں گے. ابھی جو ڈرامے میں نود ہے وہ بتاتے جاتے ہیں. اگر تم یہاں جیتے رہیں گے تو سب سناتے رہیں گے, مر جائیں گے تو نہیں سنیں گے. مالا کا ارتھ بھی تم سمجھ گئے ہو. کیا ارتھ ہے مالا کا؟ مالا مانے نمبر وار منکوں کا سنگٹھن. کوئی لیفٹسٹ ہیں, کوئی رائٹس ہیں, کوئی اونچی اسٹیج کا پارٹ بجانے والے منکے ہیں, کوئی نیچی اسٹیج کا پارٹ بجانے والے ہیں. مالا روپی سنگٹھن میں تو آتے ہیں نا. ابھی تم مالا کیا پھیریں گے؟ شیو بابا تو بیٹھے ہیں, تو تم کس کو نمسکار کریں گے؟ بھکتی مارگ میں مالا پھیرتے تھے تو کس کو نمسکار کرتے تھے؟ ساری مالا کے سارے من کے سمرن کرتے جاتے تھے, پھر کس کو ماتھا جھکاتے تھے؟ میر کو یا پھول کو ماتھا جھکاتے تھے. تو ابھی تم جانتے ہو کہ دیوتاؤں سے بھی اونچے ہیں برہمن. شیو بابا براہمنوں کو پڑھائی رہے ہیں. تم براہمن سارے وشو کو پوتر بناتے ہو. ابھی تو یہ ساری دنیا نرک ہے, بھکتی کو اجان کہا جاتا ہے. جیسے کہ گھور اندھیارا ہے, اجان روپی گھور اندھیارے سے ہوتی ہے درگتی, اور جان کے سوجرے سے ہوتی ہے سدگتی. ارتھات بھکتی سے درگتی. سنیاسی خود یہ باتیں نہیں سمجھتے ہیں. تم سمجھاویں گے تو جھٹ سمجھیں گے کہ کیسے برہما کی رات اور کیسے برہما کا دن ہوتا ہے. آدھا کلپ برہما کی رات اور آدھا کلپ برہما کا دن ہوتا ہے. تو جب بدھی میں بیٹھتا ہے یہ برہما کی رات ہے, اجان کی رات ہے, تو پھر پرانی دنیا سے بیراگ آتا ہے. دیہ سہت دیہ کے جو بھی سمبندھ ہیں, جو بھی بھانتی بھانتی کے سمبندھ دیکھتے ہو, وہ سبھی کو بھولتے جاؤ. تم بچوں کو نہ ان کو پاؤں پڑنا ہے نہ ہاتھ جوڑنا ہے. کن کو؟ ہاں جی, तुम जानते हो ऊंचते ऊंच तो ये बाबा है ना। लौकिक दुनिया में बच्चे होते हैं तो घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? फिर तो सारा समय हाथ जोड़ करके ही खड़े रहो। ये सभी भक्ति है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा गुलाम बन करके आया हूं।
अरे
तुमको राजा ही देकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। तो यहां तुमको बेसमझ से समझदार बनना है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया में सभी बेसमझ हैं और नई दुनिया में सब समझदार थे। कैसे है? ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है? तो यहां सब बेसमझ हैं। और बाबा के बच्चे हैं? बाबा के बच्चे समझदार हैं या बेसमझ हैं? समझदार हैं। अगर समझदार हैं तो सदैव निश्चय बुद्धि रहना चाहिए। ये अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि है? तो सदैव निश्चय बुद्धि हैं, है? अगर नहीं है तो मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? मृत्यु लोक में है। पुरानी दुनिया में है या नई दुनिया में है? पुरानी दुनिया में सब समझदार होते हैं या बेसमझ हैं? बेसमझ होते हैं, क्योंकि घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। अभी फिर बाप तुमको समझदार बनाते हैं। तुम समझदार बनेंगे तो फिर अमर लोक में चले जावेंगे। कब चले जावेंगे? सतयुग में है? सतयुग में अमर बनेंगे, अमर लोक में चले जावेंगे या यहां ही जाना है? यहां ही ऐसी स्टेज बनेगी कि आत्मा कभी अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु को नहीं पाएगी। बाप कहते हैं कुछ भी हो जाए तुम मांगो कुछ भी नहीं, तुम पुरुषार्थ करो, मांगने की दरकार है ही नहीं। ये तो समझते हो तुम पवित्र योगी थे। वेयर इज प्योरिटी देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होती है। अभी अपवित्र भोगी बने हैं इसलिए आयु भी छोटी हो गई है। फिर आधा कल्प के लिए तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी। वहां 21 जन्म है जबकि तुम पवित्र रहते हो। फिर अपवित्र बनने से 63 जन्म लेते हो। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप का नमस्ते।